श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद आठवां अध्याय ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन श्लोक संख्या 13। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य एव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधय आत्मानं यदि इच्छसि नृप आसनम्। तपसाराध्य पुरुषम् तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम् तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। तपस्या से आराध्य संतुष्ट करके पुरुषम श्री भगवान तस्य उसकी एव केवल अनुग्रहेण कृपा से मैं मेरे गर्भे गर्भ में त्वं तुम साधय प्रस्थापित करो आत्मानं अपने को यदि यदि इच्छसि चाहते हो नृप आसनम् राजा के सिंहासन पर। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें श्री भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म लेना होगा। तात्पर्य: सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनसे अपना शरीर परिवर्तित करने के लिए कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे। तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। अनुवाद दोहराइएगा: यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें श्री भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें मेरे गर्भ से अगला जन्म लेना होगा। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो महारानी सुरुचि का प्रवचन कुवचन चल रहा है, जिसमें वो ध्रुव महाराज को और भी कटु वचन बोल रही हैं और अभी कह रही हैं निश्चित रूप से कि हे ध्रुव, अगर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है, अगर तुम्हें राजा बनना है, राजा बनने की बात तो दूर है, अगर तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में भी बैठना है तो तुम्हें पहले मरना होगा, और जब तुम बहुत तपस्या करोगे, भगवान नारायण को तुम प्रसन्न करोगे, तब संभव है कि तुम मेरे गर्भ में जन्म ले पाओगे और उसके बाद तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार होगा। तो देखिए कितना घमंड, कितना गर्व। भौतिक संसार में सभी की बीमारी यही है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र समझता है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि सारा ब्रह्मांड मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, या कम से कम घूमना चाहिए, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, ये सारा ब्रह्मांड मेरे भोग के लिए है, इसलिए मुझे ही केवल इस ब्रह्मांड का प्रभु बनना चाहिए और अन्य सभी लोगों को मेरे अध्यक्षता में कार्य करना चाहिए, उन्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। यह भौतिक भावना है और इस भावना की वजह से हम सोचते हैं कि मुझसे संबंधित कोई चीज अगर हो तो वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है, और मेरे से कोई संबंधित अगर वस्तु नहीं हो तो वो अच्छा नहीं है। मेरा शरीर यही अच्छा है, मेरी बुद्धि यही अच्छी है, मेरी क्षमता मेरी योग्यता वही ठीक है, और मेरा परिवार यही सबसे अच्छा परिवार है, मेरा बच्चा वही अच्छा है, भले वो लफंगा क्यों ना हो लेकिन मेरा बच्चा है इसलिए सबसे अच्छा है, मेरा समाज सबसे ऊंचा है, मेरा देश सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मेरा है। देश ऊंचा नीचा है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ एक दूसरी बात है, लेकिन देश अच्छा क्यों है? मेरा है इसलिए। परिवार अच्छा क्यों है? मेरा है। बच्चा अच्छा क्यों है? मेरा बच्चा है। तो बच्चा अपने आप में अच्छा हो या बुरा हो दूसरी बात है, देश अपने आप में अच्छा हो बुरा हो, समाज अपने आप में अच्छा हो बुरा हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये मेरा है इसलिए सब अच्छा बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है सारे ब्रह्मांड में, इसलिए मेरे जैसे मेरे से संबंधित जो भी चीज हो वो अच्छा है। तो मूल बात क्या है कि मैं प्रथम श्रेणी का हूं, इसलिए सबका संबंध मुझसे होना चाहिए। तो उसी प्रकार से सुरुचि महारानी भी सोच रही है, सर्वश्रेष्ठ अगर बनना है, राजा बनने का अधिकार अगर तुम्हें चाहिए तो तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, मेरा पुत्र बनना होगा। क्यों, ध्रुव महाराज का योग्य नहीं है राज सिंहासन पर बैठने के लिए? अवश्य है, उत्तम से भी अधिक योग्य थे वो, बड़े पुत्र थे। लेकिन फिर भी ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं होती है, भ्रम की कोई सीमा नहीं होती है ये भौतिक संसार में। और सुरुचि इसी भ्रम के शिकार हो गई है और सोच रही है कि मेरे ही गर्भ से जन्म लेने से इसके जीवन का कुछ हो सकता है, अन्यथा ये सब बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो सुरुचि महारानी की ईर्ष्या इतनी बढ़ गई है, इतने भ्रम में गहराई तक पहुंच चुकी है कि वो कह रही है ध्रुव से कि अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें मरना होगा। देखिए, अपने सौतेले पुत्र से ही वो कह रही है कि तुम्हें मरना होगा, और इतना ही नहीं, तुम भगवान को प्रसन्न करो, तपस्या करो, फिर हो सकता है कि तुम मेरे पुत्र बनकर आओगे। मतलब देखिए अपने बारे में क्या सोच रही है सुरुचि महारानी, कितना घमंड है कि सोच रही है कि साधारण तरह से कोई मेरा पुत्र नहीं बन सकता, मेरा पुत्र वो तब बन सकता है जब कड़ी तपस्या करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, और तब जाके मेरा पुत्र बन पाएगा। जब हम कोई तपस्या करते हैं और तपस्या के फल पे कुछ तपस्या के बल पर कुछ हम फल प्राप्त करते हैं तो हम समझते हैं कि ऐसा फल जो है बहुत ही मीठा होना चाहिए, यह बहुत ही कठिन होना चाहिए साधारण तरह से प्राप्त होने के लिए। अर्थात अगर किसी चीज की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से, बहुत मूल्यवान चीज हो उसके लिए हम तपस्या कर रहे हों और वो प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं हाँ वास्तव में ऐसे ऊंचा जो पद प्राप्त करने के लिए, जैसे भगवान के धाम में उनका दास बनना या शुद्ध भक्त बनना या ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना, भी इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है ऊंचे ऊंचे लोक की प्राप्ति के लिए। तो सुरुचि महारानी सोच रही है कि मेरा पुत्र बनना ये भी एक ऐसा ही ऊंचा पद है जिसके लिए तपस्या करने की आवश्यकता है। वास्तव में संसार में जन्म लेना हो तो किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है, तपस्या नहीं करते इसलिए तो जन्म लेना पड़ता है यहां पर। तो सुरुचि महारानी कह रही है कि मेरा पुत्र बनना एक इतना ऊंचा पद है कि तुम्हें जीवन भर तपस्या करना होगा, भगवान को प्रसन्न करना होगा, तभी जाकर तुम मेरे पुत्र बनोगे। मतलब घमंड की कोई सीमा नहीं है। आजकल हम इतना भी नहीं अब कहते हैं कि ठीक है यहां मेरे फैक्ट्री में नौकरी करना है तो तुम ये डिग्री प्राप्त करके आओ या तुम ये कुछ कोर्स करके आओ। ठीक है, हर एक चीज के लिए योग्यता होती है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर वो कह रही इतना घमंड इनको है कि वो कहती है कि जब तक तो तपस्या नहीं करोगे मेरा पुत्र नहीं बन पाओगे। और ध्रुव महाराज ने वास्तव में वैसे ही किया, तपस्या किया, लेकिन सुरुचि महारानी को पता नहीं चला कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति या नारायण के प्रति तपस्या करने का फल कितना तेजस्वी होता, कितना प्रबल होता। ध्रुव महाराज ने तपस्या की और उनको ऐसे पद की प्राप्ति हुई जिसके बारे में महारानी सुरुचि ने सपने में भी नहीं देखा था, उनको कल्पना भी नहीं थी कि ऐसे कुछ हो सकता है, ध्रुव ऐसे कुछ कर भी सकता है। वास्तव में सुरुचि महारानी ये नहीं सोच रही थी कि ध्रुव महाराज जाके तपस्या करेगा, ना ही वो इतना कुछ इच्छा कर रही थी कि जाके तपस्या करे, वो केवल उनको इतना अपमानित करना चाहती थी कि तुम खबरदार तुम यहां फिर से बैठो, कैसे तुम्हारे मजाल हुए कि तुम वहां जाकर बैठ गए। उनको केवल अपमानित करना चाहती थी और इसलिए ये सारे कटु वचन बोल रही थी। लेकिन ध्रुव महाराज को ये सहन नहीं हुआ और आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से वास्तव में वो तपस्या करने चले गए। जब उनकी माता सुनुति ने बताया कि तुम्हें भगवान जंगल में ही मिलेंगे, जंगल में जाकर तुम्हें तपस्या करना होगा, तो वास्तव में चले गए। और अंत में ध्रुव महाराज ने कहा भी, स्थानाभिलाषी तपस स्थितो हम त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज ने कहा, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया कड़ी तपस्या करने के बाद में, जब भगवान खुद उनके सामने आए तो कहने लगे कि हे प्रभु, स्थान ऊंचे ऊंचे स्थान की अभिलाषा थी मेरे हृदय में, इसलिए मैं तपस्या में अपने आप को मैंने स्थित कर लिया। स्थान अभिलाषी, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितो हम, तपस्या में अपने आप को अपने आप को मैंने स्थित कर दिया। और ऐसे कड़ी तपस्या करने के बाद में त्वाम प्राप्तवान, आपकी प्राप्ति हो गई, आपका दर्शन हो गया। देव मुनिन्द्र गुह्यम, और ऐसे दर्शन प्राप्त करना, आपका संग प्राप्त करना तपस्या से, ये बड़े बड़े देवताओं और मुनिगणों को भी बहुत कठिन है, उनके लिए भी आसान नहीं है ये बात। इंद्रदेव हो, ब्रह्मा जी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हो, ब्रह्मलोक महरलोक जनलोक, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी वैरागी लोगों के लिए भी आपका दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। लेकिन आपका दर्शन मुझे हो गया है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन अभी जब मैंने आपको प्राप्त किया है, काचम विचिन्वन, जिस चीज के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था, जिस हेतु मैंने तपस्या की, तो वो भी मुझे छोटे कांच के टुकड़े के तुल्य लग रहे हैं। और आपका दर्शन जो है, और आपका, आपकी भक्ति, आपकी सेवा करने का मौका जो मुझे मिला है, वो एक दिव्य रत्न के बराबर है। इसलिए स्वामिन, हे स्वामी, हे प्रभु, कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, अभी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, अभी मुझे किसी भी वरदान की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिव्य रत्न मिल गया है, मुझे दिव्य रत्न मिल चुका है। और मैं पहले इतना मूर्ख था कि आपके पास टूटे हुए कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे क्या दिया? दिव्य रत्न दिया। मान लीजिए कोई आदमी कोई नौकरी के लिए जाता है और मालिक पूछता है कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए? 2000 मिले तो मैं संतुष्ट हूं। और मालिक बोले ठीक है, 2000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। और बाद में अगर मालिक बोले कि मैं तुम्हें 1,00,000 महीने दूंगा यही काम के लिए, तो क्या सोचेगा? उसी प्रकार से ध्रुव महाराज उनके पास, भगवान के पास में गए थे, अभी उनको ये महसूस हुआ कि अरे, मैं क्या मांग रहा था भगवान से, ये तो कांच के टुकड़े के बराबर है। और ध्रुव महाराज क्या मांग रहे थे भगवान से? सारे ब्रह्मांड का राज्य, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद मांग रहे थे। लेकिन भगवान ने उनको क्या दिया? एक ऐसा भेंट दिया उनको, जिसकी तुलना में ध्रुव महाराज को लगा कि सारे ब्रह्मांड का राज्य भी कांच के टुकड़े के बराबर है। सड़क पर जब हम जाते हैं, कई बार कोई हम दुर्घटना देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया है, वहां पे कांच के टुकड़े पड़े रहते हैं, गाड़ी के शीशे के टुकड़े पड़े हुए रहते हैं, और हम क्या उनके लिए कुछ परवाह करते हैं? क्या उठाकर हमारे बैंक में डालते हैं, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में? परवाह नहीं करते हैं, उसको, उससे अलग होकर चले जाते हैं। कांच के टुकड़े अगर गिरे हों तो कोई इसकी परवाह नहीं करता, कोई कीमत नहीं होती इसकी। लेकिन अगर कोई डायमंड, कोई हीरा मिल जाए किसी को रास्ते में, तो 50 लोग एक साथ में उसके ऊपर कूद पड़ेंगे, झगड़ा होगा, मेरा है, मेरा है। तो ठीक उसी प्रकार से जब ध्रुव महाराज को सारे ब्रह्मांड का राज ही मिल गया, तो ध्रुव महाराज ने सोचा ये टूटे हुए कांच के टुकड़े के बराबर, कांच के बराबर है, और भगवान की सेवा, भगवान का दर्शन, ये तो दिव्य रत्न के बराबर है। तो सुरुचि महारानी को ये पता नहीं था कि भगवान को प्रसन्न करने का फल क्या मिल सकता है, कितना शक्तिशाली है ये भक्ति का मार्ग, ये नहीं जानती थी। अपने घमंड में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए सोच रही थी कि तपस्या करने से केवल मेरे पुत्र की प्राप्ति, मेरे पुत्र के पद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये कितना घोर अंधकार है, अज्ञान है, देखिए। इसलिए यही बीमारी हम सबको है, कम मात्रा में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो इस बीमारी से हम सभी को दूर होना है, अपने आप को नम्र बनना है। नम्र बनाकर सभी को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को तृण से भी नम्र बनाए, बिल्कुल तुच्छ माने अपने आप को, अपने आप को कोई विशेष व्यक्ति न मानते हुए अपने आप को तुच्छ माने। जितने आगे हम भक्ति में प्रगति करते हैं उतना ही ज्यादा हम अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के रचयिता, वो कहते हैं कि मैं इतना पापी हूं कि कोई व्यक्ति अगर मेरा नाम भी ले तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और वास्तव में वो ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो कोई ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लिखने के लिए ताकि लोग समझें कि मैं कितना नम्र हूं वो ऐसा कह रहे हैं, नहीं, वास्तव में उनके हृदय में ये भावना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतनी ही ज्यादा हमें ये प्रतीत होता है कि हम कितने गिरे हुए हैं, हम कितने बेकार हैं। और जितना ज्यादा भौतिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं उतना हमें लगता है कि मैं कितना ऊंचा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये है फर्क भौतिक संसार में और आध्यात्मिक संसार में। आध्यात्मिक जगत में हर एक व्यक्ति अपने आप को दास मानता है, वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को आगे या ऊपर बढ़ाना चाहता है। लेकिन भौतिक जगत में बिल्कुल उल्टी बात है, यहां पर हम दूसरों को नीचे दबाना चाहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। ये बीमारी, कितनी बीमारियां हैं भौतिक जगत में, बीमारियों की कमी नहीं है। ये टीबी, एड्स, कॉलेरा बीमारी तो छोटी छोटी बीमारियां हैं, एड्स से भी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये एक शरीर खत्म हो सकता है। लेकिन ये मूल बीमारी जो घमंड का है, जो भोग की भावना है, इसकी वजह से तो हमारे करोड़ों शरीर नष्ट होते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम अटकते जा रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आजकल सबसे भयानक बीमारी एड्स के बारे में सब लोग कह रहे हैं, कैंसर, एड्स। लेकिन ये जो बीमारी है भोग कि हम संसार के प्रभु बनना चाहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक शरीर नहीं लाखों करोड़ों शरीर धारण करके, ग्रहण करके उनको नष्ट करना पड़ता है। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम अटक जाते हैं। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जयगुरे कारण कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। जब हम अपने आप को भोगी समझते हैं, अपने आप को प्रभु समझते हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मैं कुछ हूं, उस समय हमें ये संसार के अलग अलग योनियों में भ्रमण करना पड़ता है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। इस प्रकार से हमारा संसार का जीवन आरंभ हो जाता है। तो हमें सुरुचि महारानी की तरह नहीं बनना है। भले वो महारानी है लेकिन देखिए क्या फायदा है, कितना घमंड, कितना अज्ञान। भले हम कोई साधारण घर में भी क्यों ना हो, गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, अशिक्षित भी क्यों ना हो, लेकिन भले हम भगवान का भक्त बने, इसी में हमारी अच्छाई है, इसी में हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। कोई राजघराने में भी हमारा घर हो लेकिन सुरुचि महारानी जैसी भावना हो तो क्या क्या फायदा है उसका। इससे अच्छा ये है कि हम किसी ऐसे घर में पैदा हो जहां हमें वैष्णव संस्कार मिले, या सबसे अच्छी बात कोई अगला जन्म ही डाले और इसी जन्म में शुद्ध भक्त बन के भगवान के धाम में लौटकर चले जाए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए, आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो कि मेरा जन्म बार बार इधर होता रहे तो मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे एक भक्त के घर में कीड़े का जीवन मुझे स्वीकार है, लेकिन अभक्त ब्रह्मा जी का भी जीवन मुझे स्वीकार नहीं है। देखिए क्या ऊंची भावना है। इसलिए हमें ऐसे भक्तों के पदचिन्हों में चलना चाहिए, ऐसे भावना का अनुकरण हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे यही भक्ति भावना जागृत हो जाती है। कितनी ऊंची भावना, देखिए, भक्त के घर में कीड़े का जन्म क्यों ना हो लेकिन अभक्त ब्रह्मा जी नहीं बनना है हमें। अगर ब्रह्मा जी भक्त हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्मा जी कई होते हैं, ब्रह्मांड में हो सकता है वो भक्त नहीं है, और ब्रह्मा जी का पद तो ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पद है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मुझे सबसे ऊंचा पद भी नहीं चाहिए अगर वहां भक्ति नहीं है तो। कीड़ा भी अगर बन जाऊं तो भगवान के भक्त के घर में नाम संकीर्तन तो चलता रहेगा, भगवान का नाम का कीर्तन तो मैं सुनता रहूंगा, उनके घर में हरि कथा चलती रहेगी वो तो मैं सुनता रहूंगा, और साथ साथ भगवान का प्रसाद भी मैं खाता रहूंगा। कभी कभी इधर उधर थोड़े प्रसाद के कण गिर जाते हैं, कीड़े लोग चींटी खा जाते हैं, उससे कीड़े चींटी भी भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जन्म लेना भी है तो भक्त के घर में जन्म लेने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर केवल आपकी सेवा चाहिए, बस। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे कोई ऊंचा पद चाहिए, मुझे ब्रह्मा बनना है, देवता बनना है, राजा बनना है, नहीं, मुझे केवल आपकी सेवा जन्म जन्मांतर चाहिए। भले अगला जन्म मेरा किसी भी परिवार में क्यों ना हो, लेकिन वो भक्त का परिवार होना चाहिए, मुझे आपकी सेवा मिलनी चाहिए, बस। तो ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है कि जहां भी हम हो हमें भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। नारायण परा सर्वे न कुटश्चन विभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। शिव जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि भक्त नारायण परायण, ये इतने महान होते हैं भगवान श्री नारायण या कृष्ण के भक्त कि चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, पृथ्वी लोक पर हो, चाहे वो मुक्त अवस्था में हो, चाहे वो भगवान के धाम में हो, उनका एक ही कार्य है, और वो क्या है? भगवान की सेवा करना। तो भगवान के भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां जाएगा, जहां भी जाए भगवान की सेवा ही करता है। इसलिए ऐसे एक पद या ऐसे प्रवृत्ति की प्रार्थना के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आप हमें चाहें तो इसी जीवन के अंत में आपके धाम में ले जाइएगा, अगर आप नहीं चाहें तो कम से कम इतना तो हमें वरदान दीजिए कि आपके सेवा से विमुख हम कभी नहीं हो जाएंगे, आपके सेवा में हमेशा हम रहेंगे, ये भक्त की प्रार्थना होनी चाहिए। उसी प्रकार से इस जीवन में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो जाए, जैसे भी कष्ट में आप हमें डालना चाहें, केवल ये एक वरदान हमें दीजिए कि हम भक्ति मार्ग से कभी हट ना जाएं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कभी बंद ना करें, भक्तों का संग करना बंद ना करें, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना हम कभी बंद ना करें, भक्ति के नियमों का पालन करना कभी बंद हम ना करें, बस ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी क्या होगा? आपने जो सुना है, जो समझा है, समझा भी नहीं होगा लेकिन जो सुना है वो अभी बताना है, एक 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 पॉइंट पॉइंट। कौन बताएंगे? मैं और मेरा, इस भावना से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं और मेरा मतलब शरीर पे आधारित, केवल मैं नहीं शरीर, ये मेरा शरीर है, मैं हूं, मैं मेरा शरीर हूं, और शरीर से आधारित जो भी कुछ चीज है, ये भावना की वजह से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और हाँ वो सही है, लेकिन जो पॉइंट हमने बताया उस सिलसिले में वो क्या था? परिवार, देश, समाज, इसके बारे में हमने क्या कहा था? हाँ, पॉइंट इसमें क्या था कि हमने बताया कि लोग क्या सोचते हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरा देश, ये सब श्रेष्ठ है, हर एक व्यक्ति ऐसे सोचता है। लेकिन क्यों सोचता है? क्योंकि वो मेरा है। इसका मतलब क्या है? एक घमंड के वजह से अहंकार की वजह से सोचता है। ऐसा नहीं है कि बाहरी दृष्टि से ये परिवार सबसे अच्छा है या ये बच्चा सबसे अच्छा है या देश समाज सबसे अच्छा है, नहीं, क्योंकि ये मेरा है इसलिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए मेरे से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको तो सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए, ये भावना है। ठीक है, और कोई बात? सुरुचि महारानी ने बताया, अगर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है तो क्या करना होगा? कड़ी तपस्या करनी होगी, भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, शरीर त्यागना होगा, मर जाना होगा, फिर अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हो। इसका मतलब है कि सुरुचि महारानी बहुत नम्र थी, नहीं सॉरी घमंडी थी, और इसलिए हमें सुरुचि महारानी जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। कैसे बनना चाहिए हमें? चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखलाया है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तृण से भी ज्यादा नम्र, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, दूसरों को हमेशा सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए, अपने आप के लिए कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और ऐसी अवस्था में हम क्या कर पाएंगे, सदा